या जहरा,
आपने हमें बुलाया है क्या हमें ये तस्वीरें दिखाने के लिए?
मैं अभी आपको बताता हूं, हमने गाड़ी पर जो रंग देखा उससे हमें पता चला कि नदाफ साहब की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। टक्कर मारने वाली गाड़ी नीले रंग की थी। क्या आप किसी ऐसी गाड़ी को पहचानती हैं?
जी नहीं, मैं नहीं जानता। अम्मी आप जानती हैं?
नहीं बेटा, मैं भी नहीं जानती। क्या कोई ऐसी बात है जिससे हम लोग बेखबर हैं?
चूंकि इस तरह की कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिली और नदाफ साहब को करज हाईवे की तरफ जाना था लेकिन वो काशान हाईवे पर पाए गए, इससे मामला थोड़ा मुबहम नजर आ रहा है।
वो काशान जाने का मसला हल हो गया है। बाबा गुड़िया खरीदने काशान जाते थे और ये बात आपने फाइल में भी लिखी है।
ठीक है, इससे केस का एक पहलू रोशन हो जाता है। आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं, सिर्फ कहीं ना जाइएगा। अगर कोई मसला दरपेश आता है तो मैं आपको बुलाऊंगा।
कब राबता करेंगे आप? एक महीना हो गया मेरे बाबा का एक्सीडेंट हुए, एक महीना हो गया एक बेहस इंसान ने मेरे बाबा को टक्कर मारी थी, एक महीना हो गया है कि बुरी हालत में है हम लोग, कुछ भी पता नहीं है हम लोगों को।
जाओ बैठो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बात करती हूं। जाओ जल्दी।
हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मोहतरमा, आप तशरीफ रखिए।
मैं जानती हूँ, मेरे बेटे ने एक एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खो दिया था, इसी वजह से वो सख्त लहजे में बात कर रहा है। वो बहुत परेशान है, आप
मगफरत करें।
खुदा तमाम मोमिनीन की मगफरत करे।
बहरहाल हाजी साहिबा, ये केस जब तक गाड़ी का मालिक नहीं मिल जाता खुला रहेगा, आप तशरीफ ले जा सकती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जहमतों का शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे।
मैंने अर्ज किया, हम सीधे कंपनी से माल उठाते हैं, दाम में कोई फर्क नहीं है। अब अगर आपको वो वाला सेट चाहिए तो मैं कुछ रियायत कर सकता हूँ।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें ये पसंद आया है, थोड़ा सा कंसेशन दीजिए ना।
अब इतना भी भावताव मत करें, वही ले जाएंगे जिसकी कीमत कम है।
अरे भावताव की क्या बात है, ये कीमत इसकी ये नहीं है। अरे जनाब, मैं खुद इस काम में हूँ।
वाहिद
जी साहब,
क्या हो?
तो फिर रात को जल्दी आ जाइएगा।
ठीक, जल्दी आऊंगी ताकि तुम्हारी मदद कर।
वैसे कोई काम तो है नहीं, खाना बाहर से ले लेंगे।
होटल से क्यों, मैं खुद आके कुछ पका लूंगी, सबके साथ बैठ के खा लेंगे।
अब आ तो जाएं, कुछ कर लेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
अरे एक मिनट रुकना, अभी आता हूं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत खुश आमदी।
बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ चचा, हमें छोड़कर कहाँ चले?
हाँ बताओ।
देखिए भाई, ये सेट हमें पसंद आया है, आखिरी कीमत बता दीजिए। मैंने
कहा तो फाइनल कीमत है, क्योंकि कंपनी का माल है, रियायत नहीं कर सकते इससे ज्यादा।
देखिए भाई, आप 3 लाख मजीद कम कर दें।
भाई साहब, हमें नहीं बेचना है, जाइए आप।
भले आदमी तुम व्यापारी हो, ये कौन सा रवैया है, नहीं बेचोगे?
भाई अगर खरीदार वाकई खरीदार होता है तो वो अच्छी तरह भाव करता है।
देखो, कम कर दोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, 2 पैसों से आपका नफा कम नहीं होगा। लोगों की दुआएं लीजिए, मेरा खुद यही कारोबार है, मालूम है ना?
मेरे भाई, हमारी चीजों की कीमत हतमी है और हमें किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं खुद यही कारोबार करता हूँ, तशरीफ ले जाइए।
चार घंटे तक मेरा वक्त खराब किया और आखिर में जो भी
मेरे भाई हम नहीं बेचना चाहते
आप बात क्यों कर रहे हैं क्या चाहते हो
चलिए
देखो इस्माइल साहब किस तरह से बात कर रहे हैं
अब आप इतना गुस्सा ना करें आपके लिए नुकसानदेह है
क्या करें ऐसे भी ग्राहक आते हैं ऐसे मौके से भी नहीं बच सकते
मुझे आज जल्दी है मैं कंप्यूटर ऑन करके जा रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग है
इस्माइल बेटा तुम जिस तरह से चाहोगे वैसे ही होगा तुम चाहो तो बस को मेट्रो में बदल दो ठीक है मैं तो फरमाबरदार बंदा हूँ पूरी तरह से फरमाबरदार जैसा आप कहेंगे वैसा होगा
नासिर साहब वो जो नीली पिकअप सड़क के उधर खड़ी है आप उसके मालिक को जानते हैं
शायद यहाँ की दुकानों के लिए माल लेकर आई होगी क्यों क्या हुआ
कुछ नहीं ऐसे ही
आओ बेटा वहां जाके शरारत मत करना
जी अम्मी अम्मी हम लोग दादा के घर जा रहे हैं ना
हाँ बेटा लेकिन वहाँ शोर शराबा नहीं करना ठीक है
जी
ठीक है से आना अच्छी
जी 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 सही है
अच्छे बच्चे
अच्छी तरीके से
जल्दी जल्दी आओ चलो चलो चलो
मजा आएगा
अभी आई अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम
मैं टेलीफोन पर कुछ समझ नहीं पाई मैं फोन पर तुमसे बात कर रही थी लेकिन बाबा आ गए तो मेरी बात अधूरी
अच्छा,
रह गई
अच्छा बताओ अली को क्या हुआ है क्या हुआ है
घबराओ मत परेशान मत हो अंदर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ
मरियम तुम्हें खुदा का वास्ता कहो अली को पुलिस स्टेशन क्यों ले गए थे
अच्छा ही है गलती कर बैठा गैराज के दो लड़कों से दोस्त हो गया था उन्होंने पुलिस के सामने इकरार कर लिया कि अली के जुर्म में शामिल नहीं है अब कोई परेशानी उन्होंने अली को छोड़ दिया है
उन लोगों ने क्या किया था
अब छोड़ो भी
बताओ जल्दी से नहीं तो मैं अली को इतना मारूंगी कि बस नहीं
सड़क के किनारे खड़े गायों के रेडियो टेप चुराए हैं
या अल्लाह मैं बर्बाद हो गई
खुदा के वास्ते रुक जाओ बहराम ने उसे बहुत डांटा है अगर तुम उसकी माँ का फरीज अदा करना चाहती हो अदालत जाओ उन बच्चे की सरपरस्ती तुम्हारे पास है उसे अपने साथ ले जाओ यहाँ पर इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है
बहराम पर मुकदमा दायर कर दूं हाँ बहमन की रूह को इतना भी ना सताए अगर मुकदमा करने की बात होती तो वो खुद इस वाकये के बारे में
तुमने कहा था उन्हें आने के लिए
हाँ उसकी माँ लगती है
अलैकुम सलाम मोहतरमा फरूक आप माँ है भाई मिल गई अपने करतूत का सिला अभी तो मैं जिंदा हूँ तो ये हाल है उस दिन क्या होगा जब ये दूसरे मुल्क चला जाएगा सोचा है कुछ आपने
इस वक्त तो सारी दुनिया
तुम के लिए चलाओ जाओ
बहराम साहब माफ करेंगे आप आपने मेरे बच्चे का जीना अजीरन कर रखा है इसके बावजूद दावेदार है
लीजिए भाई हम अब कसूरवार ठहरे
जी हाँ आपका कसूर है मैं आपसे कितनी मरतबा कहूँगी हमारा पीछा छोड़ दें आप
ये जो प्लान आपने जिंदगी गुजारने के लिए बनाया है आपको जिंदगी नहीं दे पाएगा
इसके बारे में मैं फैसला करूंगी आपसे कोई ताल्लुक नहीं
लगता है आपने रिश्ता कबूल कर लिया है ना भाभी तो आप दूसरे मुल्क जाने वाली हैं
अभी तक नहीं अगर तुम मुदाखलत ना करो तो कुछ सोच समझ कर अपने बारे में फैसला कर लूंगी
अगर आप सुन रही हैं तो मेरे बूढ़े वालिद के खांसने की आवाज सुन सकती है अगर उनको मालूम हो गया कि बहमन का लड़का जा रहा है तो 3 दिन के अंदर ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे भाभी साहब हमने इसी तरह जिंदगी गुजारी है आपस में लगकर बैठ जाते थे ताकि सब दस्तरखान पर बैठ सके आप जब भी लौट आएंगी आपको सर आंखों पर रखेंगे हम यहां अपने बच्चों की भरपूर हिफाजत करना वो भी किसी मकाम तक पहुंच गए तो मरहूम भाई की रूह को भी आराम मिलेगा और आप भी अपने बच्चों पर नाज कर सकेंगे
अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम
भाभी आपके जाने से बच्चे बर्बाद हो जाएंगे मैं गलत कह रहा हूँ
जी हाँ गलत कह रहे हैं आप भी तो बाप हैं आपको अपने बच्चों की क्यों फिक्र नहीं है आप सिर्फ बहमन और उसकी बीवी के बारे में सोचते हैं आपको क्या पता कि आपके बच्चे किस परेशानी में क्या कर रहे हैं आपको कुछ पता है मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ये बहराम ये देखिए आप अपने भाई की बीवी और बच्चों के वसी बन चुके हैं
मरियम तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो
सलाम चाची।
वालेकुम अस्सलाम।
अली कहाँ है?
कमरे में।
खाओ बेटा।
नहीं खाना।
खा लो। अगर सही माना में माँ होती तो तुम्हारा बच्चा डेढ़ दिन तक भूखा नहीं रहता।
बाबा मैं आपको क्या बताऊं?
मैंने कभी भी तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं की। तुम मेरे पास आई थी और कहा था कि यहाँ एक नामहरम मर्द रहता है, मैं नहीं रह सकती। अगर मैं इस बुढ़िया के घर न जाऊं तो मेरा काम हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जाओ खुदा हाफिज, लेकिन अब मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ जो तुम्हारी बातों से तजाद रखती हैं। ये बच्चे मेरी आंखों का नूर हैं। इस नूर की कसम अगर तुम उन्हें मुझसे अलग करोगी और मेरी जिंदगी का नूर छीन लोगी तो मैं बद्दुआ दूंगा। फारूख, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इस बूढ़े का दिल ना दुखाओ।
मैंने तुम्हें हराम लुकमा खिलाया जो चोरी करने चले गए थे। चोरी करते हो? उठो घर चले।
कौन सा घर? हमारा कोई घर है क्या?
चुप रहो आली, जिसका घर ना हो क्या वो चोरी करता है?
बाबा की कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है।
मुझे और परेशान मत करो अली, चलो उठो चलते हैं।
अगर आपका घर होता तो मैं साथ चलता।
अभी फिलहाल हम लोग नदाफ साहिबा के घर में रहेंगे। मैंने काम भी ढूंढ लिया कि तुम मेरा साथ हो तो बहुत जल्द किराए के घर ले सकते हैं।
बहुत खूब, उन्होंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप उनके घर में काम करने लग गई हैं।
बेटा मैं और सारा वहाँ सिर्फ रह रहे हैं, समझे? हाजिया साहिबा हमें पकाने ही नहीं देती लेकिन मैं इसरार करती हूँ। अजीब मुसीबत है, हमें छोड़कर चला गया और खुद को हमारे घर का मर्द कहता है। उठो बेटा अली, उठो बेटा, मिलकर एक घर ढूंढ।
मेरा घर यहाँ पे।
पता नहीं ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। मैं किस लिए इस मर्द के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, उसकी मोहब्बत की वजह से या उसके अक्ल और इंसाफ की वजह से? अगर मैंने किसी जानवर को तुमसे आधी मोहब्बत की होती ना तो उसे इस जिंदगी की ज्यादा कद्र होती। अब मैं एक लहजा भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगी, सब खत्म हो गया। बच्चे चलो हम लोग जा रहे हैं। समाना बेटे बच्चों को लेके आओ। चलो पहनो, चलो पकड़ो इसको, तुम इसको पकड़ो।
हम इस उधर नहीं जाएं।
मरियम कहाँ जा रही हो? आओ अंदर आओ।
उसने सर उठा कभी नहीं देखा कि मैं जा रही हूँ। क्या है तो बाबा की दवाई टाइम पर दे।
अंदर चलो बेटा, बेटा चलो आओ अंदर आओ। सामान अंदर, चलो मरियम सामान अंदर चलो। चलो बेटा चलें।
मैं नहीं आ रहा।
अली,
अली आओ भी ना।
جیسے کہ فیصلہ ہوا ہے ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے جن کے نام فہرست میں ہیں، ان سب کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جو بچے ان کے بارے میں ٹرسٹ فیصلہ کرے گا۔
خادم صاحب معافی چاہتا ہوں، قالین بافی کا کارخانہ جس کو مالی مسائل پیش آئے تھے، کیا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے؟
آپ کو یاد ہوگا گزشتہ مہینے میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ قالین بافی کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس میں 15-16 خواتین کام کرتی ہیں جو اپنے خاندان کی سرپرست ہیں۔ اس کارخانے میں مزید کاریگر رکھے جائیں گے، صرف کام کی درخواست کرنے والوں کا انٹرویو کرنا باقی ہے۔
میں نے وہاں کے رئیس سے گفتگو کی اور وہ اچھے لوگ ہیں، بہت زیادہ خیر خواہ لوگ ہیں، انہوں نے ہماری بات کا استقبال کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔
معاف کیجیے گا، ایک محترمہ ہیں جعفری صاحبہ، وہ سرپرست ہیں گھر کی، ان کے دو بچے ہیں اور ان کا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کی مدد کریں تو بہت اچھا ہے۔ ایک ایسی جگہ دیکھیں جہاں پر وہ اپنا کام کر سکیں اور ایک مشین بھی خرید کے انہیں دے دیں تو انشاءاللہ خدا بھی ہم سے راضی رہے گا۔
السلام علیکم ملک کی صاحبہ۔
علیکم السلام، میں نے غلط وقت پر فون تو نہیں کیا نا؟
نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے؟ کیا
کیا آپ نے آج کا اجلاس کل تک ملتوی نہیں کر دیا تھا؟ کیا آپ نے خواتین سے نہیں کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اطلاع دے دیں؟
انہیں معلوم تو ہونا چاہیے، کیوں کیا بات ہے؟
آج ایک جوان خاتون آئی ہے یہ سوچ کر کہ آج کلاس ہے،
ان سے معذرت کر لیں اور کہہ دیں کہ کل تشریف لے آئیں۔
وہ نہیں جا رہی ہے، میں نے ان سے بہت کہا۔
نہیں جا رہی ہیں؟ کیا مطلب؟
کچھ عجیب طرح سے پیش آ رہی ہیں، جیسے کس چیز سے ڈری ہوئی ہے۔
تو پولیس کو بلا لیں۔
حاجیہ صاحب
آپ جلدی سے آ جائیں تو بہتر ہے۔
ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، فی الحال خدا حافظ۔ خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
السلام علیکم، کیا ہوا ہے؟
علیکم السلام حاجیہ صاحبہ، میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ خاتون آئی تھی آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اس کو معلوم ہوا کہ آج کلاس نہیں ہے تو وہ جانے لگی، دروازے تک گئی لیکن پھر تیزی سے لوٹ آئی، میرے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بہت ڈری ہوئی ہے لگتا ہے۔
کون سی خاتون؟
اندر ہے اندر۔
السلام علیکم۔
علیکم السلام بی بی، کیا ہوا ہے؟
میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے ان خاتون سے بھی کہا تھا، میں سوچ رہی تھی آج کلاس ہے اسی وجہ سے آئی۔
بہت اچھا کیا، بیٹھے ہیں، کیوں پریشان؟
نہیں میں چلتی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی بس۔
معاف کیجیے گا، وہ جو آدمی دروازے پر ہے آپ کے ساتھ ہے؟
ابھی تک ہے؟
جی ہاں۔
اس کو جانتی ہو؟ تمہارا شوہر ہے؟
میرا پھپھی زاد ہے۔
مسئلہ کیا ہے، ستا رہا ہے تمہیں؟
مجھے معلوم نہیں تھا پیچھا کر رہے، ورنہ میں ہرگز یہاں نہ آتی۔
میری بیٹی، اگر اس نے بے عزتی کر دی تو کیا ہوگا؟
مجھے بھی اسی بات کا ڈر ہے، کوئی اور جگہ ہوتی تو مجھے پریشانی نہ ہوتی۔
تم کسی بھی بات سے پریشان نہ ہو، ہم لوگوں نے عزت اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی ہے کہ آسانی سے کھو دیں۔
لیکن حاجیہ صاحبہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک غنڈا ہے۔
ملکی صاحبہ، میری پیاری بہن، اس لڑکی کو آپ کیوں اتنا زیادہ ڈرا رہی ہیں؟ وہ تم سے کیا چاہتا ہے کچھ معلوم ہے؟
نہیں۔
میں جا کے دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے۔
نہیں نہیں آپ نہ جائیے،
اطمینان رکھو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔
میں آپ کے ساتھ آؤں؟
آپ بس پولیس کو فون کریں۔
میں آپ کے ساتھ آؤں گی تو مجھے زیادہ اطمینان رہے گا۔
السلام
वही है, हाँ यही है।
सुनो,
रुको, अरे रुको,
सुनो
तो।
रुको तो, रुको जरा।
नहीं था, उधर की गलियों को भी मैंने देख लिया, नहीं है।
हमें देखकर भाग गया है।
उसकी साथी कहाँ है? वही खातून जो कह रही थी वो शख्स उसको सता रहा है।
अरे भाई, वो यहीं पर थी, गोया पानी बनकर जमीन में समा गई है।
मोहतरमा, इंसान हर किसी के लिए अपने घर का दरवाजा तो नहीं खोलता है ना।
ऑफिसर साहब, ये घर नहीं है, ये तो इमाम बारगाह है, सैयद शहदा के नाम पर वक्फ है। मैं भी अपने मौला की एक खादिम हूँ। इमाम हुसैन का दरवाजा तो खल्क खुदा पर बंद नहीं किया जा सकता ना।
हाँ, उस सूरत में जब कोई खादिम या दरबान वगैरह हो, अगर ये चोर होते और आप अकेली होती तो इनका किस तरह से मुकाबला करती? आपके हक पर चाकू रखकर कहता जो कुछ है निकाल दो, तो आप क्या करती, क्या करती?
इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसके खोने से मुझे अफसोस हो। मेरे बैग को अगर देखेंगे तो 10,000 तो मां से ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं।
नहीं मलिकी साहबा, आप हमारे पुलिस ऑफिसर का मतलब नहीं समझ सकी हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन मैं उस खातून को जानती हूँ, यानी उनसे 4-5 मरतबा मैंने मुलाकात की है। वो चेहरे से चोर और फरेबकार नहीं लगती।
जिस तरह से आज का जमाना बदल गया है, चोरों का हुलिया और चेहरा भी बदल गया है। आजकल ऐसे लोगों को थाने लाया जाता है जिनका चेहरा और पहनावा इंजीनियर और डॉक्टर से कम नहीं होता।
तो इसने मेरे आने का इंतजार क्यों किया? अगर चोर होती तो मलिकी साहिबा की चीजें चुरा के भाग जाती।
उनके तरीके भी पहले जैसे नहीं रह गए, उसका क्या मकसद था मालूम नहीं। आप पुलिस स्टेशन आकर एक रिपोर्ट लिखवा दीजिए ताकि हम तहकीकात करें।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब,
कोई बात नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
फरमाइए।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
माफ़ कीजिएगा, मैं एक खातून को ढूंढ रही हूँ, वो कौन से कमरे में है ये देखना चाहती थी।
उनका नाम और फैमिली नेम?
नाम है करीमे, नाहिद करीमे।
जरा मुझे देखने दें।
जी
नाहिद करीमी, जी हाँ, उनका नाम यहाँ पर है, कमरा नंबर 8 में, लेकिन अभी तशरीफ नहीं रखती, कमरे की चाबी यहीं पर है।
मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, मैं उनके लिए परेशान हूँ। क्या मैं आपको एक जहमत दे सकती हूँ कि जब वो आए तो मुझे कॉल कर लें?
आपका नाम क्या है?
मैं नदाफ हूँ, मेरा नंबर उनके पास है। बहुत शुक्रिया आपका।
जी ठीक है, ज़रूर।
खुदाफिज़। खुदा,
कोई बात नहीं, खुदाफिज़।
हाँ बेटा इस्माइल, सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम अम्मी, खैरियत से?
शुक्र है।
माँ, इन कनात साहब ने तो फ़ोन कर करके नाक में दम कर दिया।
क्यों भाई, मैंने तो उनसे मुलाकात की बात कर ली है।
पता नहीं, कह रहे हैं कि रोज़ बरोज़ घर महंगे होते जा रहे हैं। कह रहे थे कि अगर आप लोग घर की किस्त नहीं दे सकते तो आकर मामला फस्क कर दें।
मामला ख़त्म करें।
मुझे तुम्हारे बाप के कामों की खबर नहीं है, उस घर को किस लिए ख़रीदा है ये मुझे नहीं मालूम।
मुझे क्या मालूम, अब तो बाबा ने ये घर ख़रीद लिया है ना, मैं उनसे कह दूं आप फोन करेंगे।
ठीक है ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगी।
ठीक है,
आप हैं कहाँ? क्लास में?
नहीं,
मैं अस्पताल जा रही हूँ।
अच्छा, मैं भी अपने
काम निपटा कर आता हूँ, साथ में घर चलेंगे।
ठीक है बेटा,
अपना ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। तस्वीरों को तरतीब से देखते जाएं, تو لگتا ہے آپ زندگی کے سارے مراحل دیکھ رہے ہیں، البتہ اچھے مراحل۔ کتنے جوان تھے ہم لوگ مرتضی صاحب، دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب آپ کے سر میں پہلا بال سفید دکھائی دیا تھا تو آپ نے اسے توڑ کر مجھے دیا تھا اور کہا تھا یہ ہمارے ادھیڑ عمر میں داخل ہونے کی نشانی۔ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، کیا یہ ممکن تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ چھپائیں؟ آپ کہتے تھے ملی میرے لیے آئینہ بن جاؤ، اگر میں صاف نہیں ہوں اور خراشیں پڑ گئی ہیں تو مجھے بتاؤ۔ اب بتاؤ وہ سرگردانی کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے خاموشی اختیار کر رکھی؟ یہ کیسا بوجھ ہے تم پر، یہ کیسا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو تم؟ طے تو یہ تھا نا کہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہیں گے، کیا یہ نہیں تھا؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
آپ کے والد کی طبیعت ہر روز بہتر ہو رہی ہے۔
میں ہر رات اس امید کے ساتھ سوتا ہوں کہ صبح جب نیند سے بیدار ہوں تو معلوم ہو جائے یہ سب خواب تھا، لیکن اس وقت مجھے حقیقت کا علم ہو جاتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔
دو صحبہ بتا رہے تھے کسی وجہ سے آپ ہر صبح فون کرتے ہیں۔ ہاں
میں نے ابھی ابھی سیکھا تھا کہ زندگی کی مشکلوں کا کیسے سامنا کروں، لیکن پھر یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اب سکت نہیں۔
زندگی کے مسائل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان کو نظر انداز کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
ایسے لوگ تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زندگی کے مسائل کو نظر انداز نہیں کرتے اور نہ کھیل ختم ہونے سے پہلے ہار مانتے ہیں۔
آپ کے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کامیاب ہوں
انشاءاللہ۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔
تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا؟
آپ جو ان کے لیے اتنا وقت نکالتی ہیں نا، اس سے
میں نے دیکھا کہ تم ترانہ سے بات کر رہے تھے۔
شروع میں اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ بڑے نخرے والی لڑکی ہوگی اور بہت ہی بات کرنا اسے مشکل ہوگی، لیکن بعد میں دیکھا ایسی بات نہیں۔
کسی کو ایک نظر سے تو پہچانا نہیں جا سکتا بیٹے۔ وہ لوگ جن کو دنیا غصہ ور کہتی ہے اور یہ کہ تلخ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کہ انہیں برداشت کی عادت نہیں ہوتی، اکثر ایسے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ان کے دل کی باتیں سمجھنے لگو، تھوڑا صبر سے کام لو، تو دیکھو گے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے۔
اچھا تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ آپ کا صبر ہے؟
وہ غیر شادی شدہ ہے۔
ہیلو
سلام حاجیہ صاحبہ
وعلیکم السلام میری جان بہت اچھا کیا کہ تم نے فون کر لیا ٹھیک ہو
اس نے آپ لوگوں سے کیا کہا
کس نے
میری پھوپھی ذات نے
ہم لوگ گیٹ تک پہنچے ہی تھے کہ وہ بھاگ گیا
پولیس نے بھی سارے گلی کوچوں کو چھان ڈالا لیکن نہیں ملا
میں آپ سے شرمندہ ہوں
کوئی بات نہیں تم خیریت سے ہو یہی اچھا ہے
تم کس وجہ سے چلی گئی میں نہیں سمجھ پائی
میرا اور میرے پھوپھی ذات بھائی کا مسئلہ ہے
گھریلو مسئلہ ہے میں نہیں چاہتی تھی اس میں آپ کو بھی گھسیٹوں میں اس کو ٹھیک ٹھاک جواب دیتی تو بات بڑھ جاتی
اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا
ہم تو شاید تمہاری کچھ مدد بھی کر سکتے تھے
یہی جو آپ اپنی کلاسوں میں آنے کی اجازت دیتی ہیں بہت ہے
صرف آپ کو خدا کا واسطہ آج کے واقعات سے بدگمان نہ ہو میری زندگی میں بعض مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں وقت آنے پہ بتاؤں گی
استغفر اللہ کیا انسان اتنی آسانی سے کسی بندے خدا کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہے کلاسوں میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خود اور دوسروں کو یہ سکھاؤں کہ بدگمانی سے دور رہیں یقیناً تمہارے جانے کی کوئی وجہ ہوگی
اگر تم بہتر سمجھو تو مجھے بتا سکتی ہو مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی
کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں حاجیہ صاحبہ
ہاں بی بی بات کرنے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے
بہت شکریہ حاجیہ صاحبہ خدا کا شکر کہ مجھے آپ مل گئی
مجھے کام سے جانا ہے
اپنا دھیان رکھنا اور مجھے فون کر لینا خدا تمہاری حفاظت کرے
خدا
حافظ
ہیلو
فروخ صاحبہ السلام علیکم
ایک منٹ ہولڈ کیجیے ہیلو سیامک صاحب السلام علیکم
ارے آپ کی کوئی خیر خبر بھی ہے میں نے صبح سے اب تک 10 دفعہ فون کیا ہے
جی میں جانتی ہوں ایک پرابلم ہو گئی تھی
کیا ہو گیا تھا کیسی پرابلم
میں نہیں بتا سکتی سیامک صاحب میری مشکلیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں
زندگی میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے تو مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں
جانتا ہوں لیکن خود آپ بھی جانتی ہیں کہ اچھے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے لیکن یہ موقع برے حالات اور برے افکار کو ذہن سے بالکل دور کر دیتے ہیں
جی میرے لیے یہ واقعات نہیں ہوں گے
میری اپنی مشکلات ہیں میں نہیں جانتی انہیں کیسے حل کروں میں نہیں جانتی کہ ایک ٹھوس فیصلہ کیسے کروں
میں تقریباً آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن بہرحال میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ آپ کا انتظار کروں اور آپ کے انتظار میں رہوں
سیامک صاحب
میری زندگی بہت مشکل ہے ایک طرف علی ہے تو دوسری طرف اس کے دادا ہیں کہ جو علی کو دیکھ دیکھ کر زندہ ہیں
میں آپ کو اپنے مسائل میں الجھانا نہیں چاہتی
میں پوری طرح آپ کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہوں کیا کہنا چاہتی ہیں پلیز
یہ کہ آپ جرمنی لوٹ جائیں اور میرے منتظر بھی نہ رہیں ہاں بیٹا اچھا میرا بیٹا میرے پاس
امی جان مدد چاہیے آپ کو
नहीं बेटी, काम पूरा हो गया, अब कोई काम नहीं है।
अमित कनाथ साहब का क्या बना?
मैंने उन्हें फोन किया था, तय पाया है कि परसों जाऊंगी उनके पास।
आप मुझे भी फोन कर दें, मैं आपके साथ आऊंगा।
नहीं बेटा, तुम अपने काम पे जाओ, मैं चली जाऊंगी और लौट
आऊंगी। प्यारे भाई
बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। बहुत ज्यादा सहमत हो गई आप लोग।
हाजी मुर्तजा को बहुत अच्छा लगता था कि तुम सब एक साथ बैठो। उनका कहना था कि जन्नत में भी दोस्त एक दूसरे के साथ होंगे।
इंशाल्लाह अगला खाना हम सब बाबा के साथ मिलकर खाएंगे।
इंशाल्लाह बेटी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर।
वो दिन याद है जब हमने पहली बार मिलकर साथ में खाना खाया, तो यही खाना था, याद है आपको?
नहीं, मुझे तो याद नहीं। सजा, तुम्हें याद है?
अच्छा, तुम्हें तो कभी कोई चीज याद ही नहीं रहती। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबा मुर्तजा स्कूल आए थे, उन्होंने टीचर से मेरे लिए इजाजत ली और हम लोग बाहर आ गए। अलबत्ता उस दिन सिर्फ बाबा मुर्तजा के लिए।
अरे भाई, जाहिर सी बात है, खाना बना रही होंगी ना इसलिए।
हमें उनसे कितनी ढारस मिलती थी जिन दिनों वो स्कूल आते थे और हमें साथ लेकर जाते थे अपने साथ। हाँ, मैं उन दिनों का इस कदर इंतजार करती थी और सब्र करती थी कि तमाम दोस्त आए, तमाम साथी आए और देखें कि हमारा भी बाप है।
लड़की हमें कहाँ ले गई?
तुम्हें भी स्कूल का वाकया याद आ गया?
स्कूल चौथी क्लास थी, बाबा मुर्तजा स्कूल आए थे, उन्होंने स्कूल के चौकीदार से कहा कि मुझे बुला लाए। मैं आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था, स्कूल का चौकीदार यकायक क्लास में दाखिल हुआ और कहा, सज्जाद कंबरी उठो, तुम्हारे वालिद साहब आए हुए हैं। उसने बाबा जब कहा तो मैं अपना सीना तान कर शान से क्लास से निकला। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, मैं टीचर टेबल से और दरवाजे से टकरा गया।
तुम तो बचपन से बहुत शैतान थे सज्जाद।
कभी उन्होंने शर्मिंदा होने नहीं दिया, कभी भी।
देखो, तुम्हारे बाबा नहीं है, कितना बुरा लग रहा है। खुदाया उनका साया हमारे सरों पर बाकी रख।
इलाहिया
आमीन।
इलाहिया आमीन।
खुदा कबूल करे,
खुदा कबूल करे,
सलामत रहो। निकालो, खाओ भाई, ठंडा हो जाएगा।
आपके लिए जरा मेरे लिए उठा देना।
अरे यार, वो चावल दो मुझे।
अरे अम्मी, आपके
मामा बहुत ज्यादा
चाहिए। क्या चाहिए? दे, निकालो चावल।
मेरे लिए हजार बच्चे भी तुम्हारे एक कतरा आंसू से बढ़कर नहीं है। मेरा चौदहवीं का चांद तुम हो, मैं सितारे लेकर क्या करूंगा?
काश मेरी जिंदगी का इख्तियार भी मेरे अपने हाथ में होता।
मेरे जाने से सिर्फ ये हो सकता है कि मैं किसी से दिल न लगा।
मैं ये देखना चाहती हूँ कि हाजी साहब की भी मोहब्बत इससे।
बाबा भी उतनी ही उनसे मोहब्बत करते हैं जितनी वो करती है।
अगर बात करने का कोई फायदा होता तो मैं यकीन तुमसे बात करती मेरे बेटे।
मकसूद जी, तुमने इस दुनिया के कौन से काम से वास्ता रखा है? तुम अपनी जिंदगी जी रही हो।
मैं कहती हूँ कि अगर हमारे साथ रहे ताकि हम अपने बच्चे को बड़ा कर सकें।
आपका बच्चा?
मुबारक हो मेरी जान। अल्लाह ताला ने जिस तरह इब्राहिम को इस्माइल का तोहफा दिया था, तो खुदा ने उसी तरह इस बच्चे को पहले उसके माँ बाप को तोहफे में दिया और फिर मुझे और मुर्तजा को।
खुदा अपने तमाम बंदों को माफ कर दे।
इस बंदे पर जो सब्ज लाइनें आ रही हैं, वो हमारी जिंदगी की तमाम तल्ख बातों की याद दिला रही।
जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं, जल्दी।
या इमाम रजा,
हाजा साहबा कहाँ जा रही हैं?
क्या करूं मुर्तजा, मुझे एक अच्छी खबर सुनानी थी। खुदा।